महाराज जी की वाणी में आता है, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जीवन भर जो मनुष्य कर्म करता है, उसका जो नेट प्रभाव उसके स्वभाव पर पड़ता है, उसी के अनुसार जब उसकी वर्तमान देह समाप्त होती है, तब नई देह की रचना उस स्वभाव के अनुसार, या यूं कहने उस मन के अनुसार हो जाती है। इसी को गीता में भी कहा गया, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य इस देह का त्याग करता है, उसी भाव से भावित हुआ वो नई देह को प्राप्त होता है। तो सिद्धांत एक ही है, चाहे वैदिक काल से लेकर आज तक जो भी सत्पुरुषों का की जो वाणी है, या सत्पुरुषों का जो विचार है, या उनका निर्णय है, वो शास्त्र के रूप में प्रकट हुआ है, वहां यही सिद्धांत है। और ये सिद्धांत इतना अटल है कि आज तक इसमें कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं हुआ है। और हम लोग तो सोचते हैं कि मनुष्य जब पुरानी देह त्यागता होगा तो कुछ दिन कहीं रहता होगा, उसके पश्चात उसको देह प्राप्त होती होगी। लेकिन महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी मनुष्य जब प्राणी देह त्याग करता है तो नई देह धारण में बीच में क्या कोई गैप रहता है? तो महाराज जी ने कहा कि नई देह उसको तुरंत ही मिल जाती है। उस समय उनके सामने एक जोंक चल रही थी, तो जोंक को दिखाकर वो बोले, जिस प्रकार जोंक जब अपना मुंह आगे जमा लेती है तब पीछे से पूंछ उठाकर चलती है, तो जिस प्रकार जोंक की गति है उसी प्रकार मनुष्य पुरानी देह का त्याग और नई देह की प्राप्ति, ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ ही होते हैं, बीच में टाइम गैप बिल्कुल नहीं होता। और इसी का एक उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, वहां भी लिखा गया है, जिस प्रकार घास पर चलने वाला कीड़ा घास की नोक पर जब पहुंचता है तब अगले तिनके पर उतरने के लिए वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और फिर अपना मुंह जब दूसरे तिनके पर रखता है फिर उन अंगों को वो या अपने शरीर को उसी पर उतार लेता है। अर्थात देखिए कि पहले तिनके से आजाद होना और दूसरे तिनके में प्रवेश करना, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, बीच में टाइम गैप बिल्कुल नहीं है। तो विचार करिए, वैदिक काल से लेकर ये सिद्धांत आज तक टूटा नहीं है, वैसे का वैसे ही। इसलिए संसार क्या कहता है, ये तो अज्ञानियों का संसार है, इनकी बातों पर निर्णय नहीं हुआ करता। शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, या ऋषियों की वाणी क्या कहती है, निर्णय उसी आधार पर होता है। तो ये सिद्धांत इतना अटल है तो फिर कर्म का सिद्धांत भी अटल है कि जीव वही है, क्योंकि हम अपने आप को देह समझते हैं इसलिए कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जीव वही है, इस देह में भी और नई देह में भी। और जीव के अंग कौन से हैं? एक देह से दूसरी देह में जा रहा है जीव, तो किसको संग लेके जा रहा है? तो उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका जो मन है, उन्हीं को लेकर जा रहा है। इसीलिए नई देह में भी, क्योंकि इंद्रियां वही हैं, मन वही है इसका, इसलिए उसका स्वभाव भी देह छोड़ते समय जैसा होता है वैसा ही बचपन से ही वो स्वभाव उसको मिलता है, क्योंकि मन वही जा रहा है, इंद्रियां वही जा रही हैं। इंद्रियों की चंचलता भी उन्हीं पदार्थों को देख के होगी जिन पदार्थों को देखकर इस देह का त्याग करते समय उनकी उसकी इंद्रियों का स्वभाव बना हुआ था, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी कर्म कर लिए आपने पास्ट में, चाहे 100 जन्म में किए, चाहे 1000 जन्मों में किए, या वर्तमान जन्म में किए, जिन कर्मों का फल उसने नहीं भोगा है, तो उसमें से एक पैकेज के रूप में जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो आपके मन में ही सुरक्षित रहता है। और वो प्रारब्ध कर्मों का फल सुख रूप में, दुख रूप में और देह की क्रिया के रूप में वो इस जीव को भोगना पड़ता है, उससे वो बच नहीं सकता, चाहे कोई भी साधन क्यों ना अपना ले, चाहे कितने भी सत्कर्म भी क्यों ना कर ले, कितना भी पूजा पाठ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उस प्रारब्ध में 1% भी चेंज नहीं हो सकती। यहां तक कि सत्पुरुष भी इस मामले में लाचार है, वो जीते जी देह से अलग हो जाता है, उसको देह का बंधन, इंद्रियों का बंधन, मन का बंधन नहीं है सत्पुरुष, इसलिए उसको दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा का मतलब ही हुआ जो दृश्य है उससे वो तीन काल अलग है। तो दृष्टा भाव में स्थित होने के पश्चात भी सत्पुरुष की देह फिर भी चलती रहती है, वहां डिजायर नाम की कोई चीज नहीं है, देह फिर भी चलती रहेगी। इसको ऋषि उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे कोई धनुष पर तीर चढ़ा दिया जाए और उस तीर को एक बार छोड़ दिया जाए तो जब तक उस तीर का मोमेंटम खत्म नहीं हो जाता, फोर्स उसका खत्म नहीं हो जाता, वो तीर गिरेगा नहीं। तो प्रारब्ध वो फोर्स है कि जब तक वो खत्म नहीं होगा ये देह नाश नहीं हो सकती, चाहे सत्पुरुष की हो चाहे किसी पापी की हो। इसलिए वो सारे कर्म जो प्रारब्ध में है, जब तक वो इस देह के द्वारा हो नहीं जाते ये देह नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वाणी कह रही है कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, ये जीव नहीं छूट सकता। मैं जीव हूं, मैं जिंदा वस्तु हूं, मैं जानने वाली सत्ता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन अज्ञानी बन के जानता हूं। अज्ञानी बनना क्या है? अपने आप को जीव भाव से अलग हटकर देह भाव में स्थित हो जाना, अपने को देह ही समझने लग पड़ना, ये हमारे गहरे अविवेक की हालत है, गहरी अज्ञानता की हालत है। इसलिए ये अज्ञानी, इस तरह से अज्ञानी बनकर मैं जो कुछ भी संसार में क्रियाएं करता हूं, उस सब जो कर्म इस देह से होते हैं वो तो मैं यही समझता रहता हूं कि मैंने किए, क्योंकि मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं और प्रारब्ध के कर्म देह से ही होने हैं। यदि तू अपने आप को देह समझ रहा है, देह बनकर ही जी रहा है, तो सारे कर्म तो तेरे हो गए फिर। इसीलिए कहा जाता है कि कर्तापन, जिसको अहम भाव भी कहते हैं, ये कर्तापन ये मूल भ्रम है। तो मनुष्य जन्म लेकर इस कर्तापन के भाव से ही जीव ने मुक्त होना है, क्योंकि देह के द्वारा कर्म हो रहे हैं और जीव अपने आप को उन कर्मों का कर्ता समझ रहा है, जबकि वो है नहीं। लेकिन वो अज्ञानता के कारण समझ रहा है, इसलिए सारे कर्मों का फल सुख रूप दुख रूप हम सब जानते हैं। सुख और दुख जब मिलते हैं, सफलता विफलता जब मिलती है संसार में, तो इस द्वंद में मैं बेचैन रहता हूँ, सारी जिंदगी बेचैन रहता हूँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस बेचैनी से दुनिया की कोई ताकत मुझको मुक्त नहीं कर पाती, मेरा कोई भी प्रयास भी उससे मुक्त नहीं कर पाता। यदि मैं संसारी तरीके से जीवन जीता हूं तो अब बताइए कि अज्ञानी बनकर जो मनुष्य जीता है उसको वाणी यदि पशु कह रही है तो इसमें क्या गलत है? पशु के पास बुद्धि नहीं होती, वो निर्णय नहीं कर सकता, सही क्या है गलत क्या है वो नहीं समझ सकता। मेरी बुद्धि भी यदि वहीं खड़ी हुई है, क्या सही है क्या गलत है मुझको पता ही नहीं, तो मैं पशु नहीं तो क्या हूं? तो मनुष्य होते हुए भी मेरे अंदर पशु प्रवृत्ति बनी हुई है। यदि मैं सही रूप में मनुष्य हूं तो फिर मुझको ये विवेक सीखना ही पड़ता है, ये विवेक धारण करना ही पड़ता है कि वास्तव में मैं हूं कौन, ये आपको सीखना ही पड़ता है। इसी के लिए गुरु धारण किया जाता है, इसी के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है, इसी के लिए ईश्वर विश्वास किया जाता है, संसार के सुख भोगने के लिए ईश्वर विश्वास की जरूरत नहीं है। आप पूर्ण नास्तिक हो तब भी आपके सुख दुख वैसे ही मिलेंगे आपको भोगने के लिए, जैसे एक ईश्वर भक्त को मिलते हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन। इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर यदि मनुष्य ने उस ईश्वर विज्ञान को नहीं समझा, अपनी देह के विज्ञान को उसने नहीं समझा, और सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार यदि उसने जीवन व्यतीत नहीं किया, जीवन की दिशा उसने नहीं मोड़ी, तो मनुष्य होते हुए भी पूरा जन्म मैंने पशु की तरह व्यतीत कर दिया, मनुष्य वाला कर्म तो मैंने किया ही नहीं। अब बताइए कि मनुष्य जो संसारी लोग हैं कितने गहरे अंधकार में जी रहे हैं, और खुद कितने अंधकार में रहते हुए दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं दूसरों को, विचार की आंख ही नहीं है वहां पर, तो कोई किसी को सिखाएगा क्या? सिखाएगा तो वही रास्ता सिखा देगा जो अंधेरे की तरफ जाता है, उजाले की तरफ जाने वाला रास्ता तो केवल सत्पुरुषों के पास है। इसलिए जिस मनुष्य ने सत्पुरुष का आश्रय पकड़ा है, आश्रय का मतलब उनका मार्गदर्शन पकड़ा है उसने, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है, और कोई मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि मनुष्य चोला उसके पास है, बुद्धि उसके पास है, भविष्य उसका खुला हुआ है, कभी भी वो ईश्वर की तरफ मुड़ सकता है, ये संभावना उसके अंदर है। लेकिन यदि नहीं मुड़ा, संसारी ही बनके उसने जीवन नष्ट कर दिया, तो एक बैल के जीवन में और एक मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं है। बल्कि एक मनुष्य जन्म लेकर घाटा जरूर है। वो घाटा क्या है? बैल तो अपने कर्मों का फल भोगकर आगे बढ़ गया, अर्थात वो अब उससे शेष योनि में प्रवेश करेगा, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, उस जन्म में उसने कोई पाप नहीं किया। और मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है उसको पता ही नहीं है, उसका विकारी जीवन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से प्रेरित जीवन है। और ये विकार की अर्निंग करके, विकारों की कमाई करके वो संसार से विदा हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया, जो केवल संसारी है वो अपना पतन करके संसार से जा रहा है। तो आगे जो जन्म मिलना है, इससे निकृष्ट मिलना है, उसको ज्यादा कष्ट वाला मिलना है। तो यदि इस विज्ञान को आप सीख लेते हैं, और सीखने का मतलब है आपने इस विज्ञान पर विश्वास पहले किया है, विश्वास करके ही आपने सीखा है कि ये मेरे काम की चीज है, तो ये इन बातों पर विश्वास तभी आता है जब आपका विश्वास किसी ऋषि पर हो, किसी सतगुरु पर हो, किसी अवतार पर हो, तभी आप उसके जीवन से शिक्षा लोगे, जो उसने ज्ञान दिया है उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। इसलिए ऋषियों का जो जीवन है वो इतिहास के रूप में हमारे सामने होता है, और ऋषियों का जो मार्गदर्शन है वो शास्त्रों के रूप में, वाणी के रूप में हमारे सामने होता है। इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर यदि सही सही हमने सीखना है, क्योंकि इनका उत्तर जानने के लिए मैंने अपने जीवन की बाजी लगानी है, उसके अनुसार मैंने अपने जीवन को मोड़ना है, सही प्रकार का जीवन मैंने जीना है। तो इसलिए जब तक आपका ऋषि पर विश्वास ही नहीं आया, उसकी वाणी उसके वचन पर आप विश्वास क्यों करोगे? तो इसी नाते ये बात कही जाती है कि मनुष्य का एक पूर्ण ऋषि पर, पूर्ण गुरु पर विश्वास जरूर होना चाहिए। उसकी सदगति वास्तव में तभी प्रारंभ होती है, नहीं तो संसारियों की नकल करके मैं अपनी दुर्गति करके संसार से विदा होता हूं, दुर्गति करता हुआ सांसारिक जीवन व्यतीत करता हूं, सदगति का तो मुझे पता ही नहीं। सदगति के नाम पे तो पादरी, मुल्ला, पंडित ये मुझको वहम में ही डाले रखते हैं, वो अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, अपनी कमाई करते हैं, मुझको वहम में ही, अंधकार में ही डाले रखते हैं। इसीलिए उनकी पूजा पाठ से मैं अपनी सदगति समझता हूं, अपने कर्मों से अपनी सदगति नहीं समझता। तो इसीलिए मनुष्यों में वो भाग्यशाली मनुष्य है जिसको किसी पूर्ण गुरु पर विश्वास आ जाए। करता कितना है वो उसमें से, वो अलग बात है, लेकिन यदि विश्वास आ गया उसको कि इसने जो कुछ भी बात कही है, जो कुछ भी इसका मार्गदर्शन है और जो कुछ भी इसका जीवन है, वो मनुष्य को प्रेरित करता है कि सही जीवन कैसे जिया जाता है। इसलिए मेरे अच्छे दिन तभी आते हैं जब पूर्ण ऋषि का आश्रय लेकर मैं उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपनी सोच को बदलता हूं, अपने निश्चय को बदलता हूं, और उनके निश्चय के अनुसार मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने की, बनाने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए मानव देह बड़ी कीमती वस्तु है, सारी सृष्टि में इससे ज्यादा कीमती वस्तु नहीं है। और आप देखते होंगे इतनी कीमती वस्तु का लोग कितना दुरुपयोग करते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, बेईमानियां करते हैं, चोरियां करते हैं, क्रोध की आग में खुद जलते हैं और दूसरे को जलाते हैं। तो सारा संसार इन विकारों की आग में जल रहा है। कितना ही पैसा कमा लें, कितना ही भोग विलास कर लें, लेकिन मानसिक बेचैनी बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। संसार के जितने भी तरीके हैं ये मनुष्य के विकारों को कम नहीं कर सकते। इसलिए हर मनुष्य कर्तापन की आग में, इस मूल अज्ञान में जल रहा है, अपने आप को कुछ का कुछ समझ रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हर कर्म जो तू संसार में कर रहा है वो तुझको पतन की ओर ले जा रहा है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म यदि मिला है तो ईश्वर विज्ञान को सीखना ही चाहिए, तभी मैं पाप कर्म से बच सकता हूं। हम समझते हैं कि पाप कर्म, चोरी करना पाप कर्म। अब हमको यह पता नहीं है कि तरह तरह के स्वाद लेना भी पाप कर्म है, ये मैं नहीं जानता। चोरी करना तो मैंने सामाजिक दृष्टि से सीख रखा है कि ये पाप कर्म है, लेकिन कमाई करता हूं, तरह तरह के स्वाद लेता हूं, तरह तरह के भोग भोगता हूं अपनी मेहनत की कमाई से, ये पाप कैसे हो सकता है? जिस कर्म से मनुष्य का पतन होता हो वो पाप कर्म है। जिस मनुष्य का जिस कर्म से पतन होता हो वो पाप कर्म। तरह तरह के स्वाद लूंगा यदि मैं, तो आप जानते हो स्वाद कैसे लोगे? जीभ से तो लोगे ना, और ये जिह्वा जो है ज्ञान इंद्रिय है, और तरह तरह के स्वाद लोगे तो इसकी डिजायर कहां पैदा होगी? आपके बार बार मन के अंदर पैदा होगी। और ये किस गुण की ओर आपको धकेलेगी? रजोगुण की ओर आपको ले जाएगी। जो ज्यादा संसार की चीजों का भोग विलास करेगा, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनेगा, रूप को देख के खुश होगा और दिखाएगा, तरह तरह के स्वाद लेगा, इंद्रियों के भोग इकट्ठे करेगा, उसके लिए खूब कमाई करेगा, खूब पढ़ाई करेगा, तो ये कहां ले जाएगा उसको? घोर रजोगुण की ओर ले जाएगा। और अध्यात्म विद्या कहती है ये रजोगुण जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली तमोगुण में बदल जाता है। तो ये संसार का भोगी आदमी जो खूब पैसे की कमाई करता है, खूब भोग विलास इकट्ठे करता है, वो इतना बड़ा पापी हो जाता है कि वो एक व्यक्ति उसके पास देश की शक्ति आया, देश को भी बेच सकता है, उस देश के सारे नागरिकों को दुख में डाल सकता है अपने भोग विलास के लिए। ये देश के गद्दार कहां से पैदा होते हैं? इसी रजोगुण से पैदा होते हैं। इसलिए बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स, बड़े बड़े सीईओ लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के गबन करते हैं, और हजारों करोड़ रुपया देश से, देश की बैंकों से उधार लेकर विदेश भाग जाते हैं। आप जानते हो ये पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े सम्मानीय लोग हैं समाज में, इनकी करनी देखो। तो ये शास्त्र में जो निर्णय लिखा हुआ है ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, ये प्रमाणित निर्णय है। आपके चारों तरफ इसके उदाहरण बिखरे पड़े हुए हैं। तो जब इन शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है तो मनन करने का तरीका यही है कि जो वो निर्णय दे रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली समाज पर घटाकर देखो, आपको वही नजर आएगा जो शास्त्र में निर्णय दिया हुआ है। और यदि मनन नहीं करोगे तो खाली पढ़ लोगे। मैं जानता हूं कि यहां रजोगुण क्या होता है, मैं जानता हूं कि रजोगुण तमोगुण में कैसे बदल जाता है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करोगे आप, क्योंकि आपने पढ़ा है, नॉलेज गेन की है, मनन नहीं किया है। तो मनन उसके लिए है जो प्रैक्टिकली इस अवगुण में अपना सुधार करना चाहता है गंभीरता से। उसका काम बिना मनन के नहीं हो सकता, उसको मनन के क्षेत्र में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि रात दिन का जीवन तो जी रहा है, हर पल तेरे अंदर चिंतन चल रहा है, हर मिनट तेरे से कर्म हो रहे हैं। यदि तेरा मन ही नहीं है तो बचेगा कैसे तू उससे? इसलिए जैसे एक लोभी व्यक्ति रात दिन पैसे के बारे में सोचता है, कहां से पैसा लाऊं, कैसे बढ़ाऊं, हर वक्त उसका प्लानिंग चलती रहती है, उसी प्रकार जो सही जीवन मनुष्य, सही मानव जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके अंदर रात दिन चिंतन चलता रहता है कि शास्त्र कह क्या रहे हैं, गुरु कह क्या रहा है, मेरा कल्याण किसमें है, मेरा पतन किसमें है, वो कल्याण मेरा कैसे होगा, कैसे संसार के दोषों से, इन पांच विकारों से मैं बच सकता हूं। तो हर वक्त इसको इसके बाद इस पर उसकी नजर रहती है, इसलिए शास्त्रों का मनन उसके अंदर चलता ही रहता है। जैसे लोभी का पैसा कमाने के साधन में के रूप में मनन चलता रहता है, और जिस मनुष्य ने अपना कल्याण करना है, सही आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है, सफल जीवन व्यतीत करना है, उसके अंदर रात दिन इन शास्त्रों का मनन चलता रहता है, तभी वो बारीक से बारीक गलती से बच पाता है। विकार बड़े बारीक है, संसारी वो तो दिखाई नहीं पड़ते, शिकार हो जाते हैं इसका वो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते उनको। तो गहरा मनन चाहिए, और गहरा मनन के लिए कोई बुद्धि का निर्णय तो चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़ता है, या उन शास्त्रों का किसी के द्वारा श्रवण करना पड़ता है जो उसका ठीक ठीक विश्लेषण कर सके। तो उसको सुनकर, उसको पढ़कर मैं अपने निश्चय को बदलता हूं पहले, तब उन पर मेरा मनन शुरू होता है, क्योंकि पतन निरंतर प्रक्रिया है, इसी प्रकार उत्थान भी निरंतर प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर मिनट आपका पतन हो रहा है, हर मिनट आपका उत्थान हो सकता है, तो ये सुबह शाम की चीज नहीं है। यदि सुबह शाम की चीज समझ रखी है तो आप जानते ही हो, बहुत लोग सिमरन करते हैं, लेकिन उनको खुद पता है कि सिमरन में मैं फेल हो जाता हूं, मन मेरा संसार का ही चिंतन करता रहता है, ईश्वर का चिंतन करने के लिए तैयारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन के अंदर इस मार्ग का मनन नहीं चल रहा, 24 घंटे उससे विमुख है। कहीं सफलता मिल गई, उसमें फूल के कुप्पा हो रहा है, कहीं किसी ने तारीफ कर दी, उसमें फूल के कुप्पा हो रहा है, वो उसी को याद करे पड़ा हुआ है, देखो कितनी तारीफ हो गई मेरी। तो इसका इसके ऊपर तो तेरा जो मनन चल रहा है तुझे पता ही नहीं, ये तो तेरे अहंकार को बढ़ा रहा है, तो तेरा पतन हो रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक चलता है। तो इसीलिए इसमें बड़ा ही अलर्ट रहने की जरूरत है, बड़ा ही जागरूक रहने की जरूरत है। इसलिए इस विज्ञान को ऊपरी ऊपरी सुन लेना और वहम पा लेना, मैं सब जानता हूं, ये अपने साथ ही धोखा करना है। ये जीवन में उतारने वाली चीज है, इसके अनुसार मैंने जीवन पूरा व्यतीत करना होता है, और मेरी बुद्धि में इतना होश रहना चाहिए कि ये सारी जो कमाई है ये मैं संसार में छोड़ के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं जीव हूं, ये सारी कमाई मेरे ही मन के अंदर सुरक्षित बनी रहती है, स्वभाव के रूप में, कर्मफल के रूप में बिल्कुल सुरक्षित बनी रहती है, इतना सा भी नष्ट नहीं होता वो। तो ये सारी कमाई मैं, सारी दौलत अपनी मैं अपने संग लेके जाना है मैंने, तो मैं इसके प्रति लापरवाह कैसे हो सकता हूं? इसीलिए मनुष्य मानव जन्म लेकर सतो गुण की कमाई करता है, जो मनुष्य होश में है, जिस मनुष्य ने पूर्ण गुरु पर विश्वास किया है, उसकी तालीम को जिसने सीखा है, वो हर वक्त यही सोचता है कि सतो गुण की कमाई कैसे होगी। तो गुरु कहता है, प्रेमी सतो गुण की कमाई तो सत्कर्म करके होती है। और सत्कर्म कैसे होते हैं? प्रभु की याद करना प्रेम से सत्कर्म है। जो ज्ञान शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका स्वाध्याय करना, उस पर मनन करना, ये सत्कर्म है। और मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देता हूं, दूसरों को परेशान करता हूं, तो मेरा होश ये रहना चाहिए, मैं संसार में कम से कम सुख भोगने की कोशिश करूं, और जिसका मतलब है काम चलाने की कोशिश करूं। भूख लगती है तो खाना तो खाऊंगा मैं, लेकिन आहार भी सतोगुणी ग्रहण करूंगा, जो शक्ति पूरी दे, लेकिन हजम जल्दी हो जाए और शरीर हल्का बना रहे। शाकाहारी भोजन हो, मांसाहारी ना हो, तामसी ना हो, तो मैं चाहे वो खाने पीने की क्रिया है, चाहे वो लोक व्यवहार की क्रिया है, हर क्रिया में मैं कॉन्शियस रहता हूं, होश में रहता हूं, और सतोगुण कैसे मेरे अंदर गहरा बनेगा वो आपके खाने पे भी डिपेंड करता है, वो आपके बात करने पे भी डिपेंड करता है, वो आप पैसा कैसे कमाते हो उस पर भी डिपेंड करता है, आप किस दृष्टि से लोगों को देखते हो उस पर भी डिपेंड करता है। आंख से तो सभी देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हो डिफेक्टिव तरीके से देखना क्या होता है और सही तरीके से देखना क्या होता है। तो सारी क्रिया आपकी जो शरीर से होती है उस पर यदि आपकी नजर है, किस रूप में, कि मैंने हर क्रिया के द्वारा सतोगुण की तरफ मैंने बढ़ना है, तो आप हर चीज पर ध्यान देते हो। महाराज कहते हैं, प्रेमी संगत तेरी शुद्ध होनी चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मत बैठ, मत दोस्ती कर, मत घूम फिर जिसके अंदर सतोगुण ना हो, अर्थात जिसको अपनी जिंदगी का होश ना हो, नहीं तो तू ऐप सीख लेगा। शराबी कैसे बन जाते हैं? मित्र ही उसको शराबी बनाता है। शाकाहारी मांसाहारी कैसे बन जाते हैं? मांसाहारी लोगों के साथ बैठते हैं, वो उनको पाठ पढ़ाता है, बड़ी स्वादिष्ट है, खा के तो देख, उसको ये पता ही नहीं है कि इसका मेरे स्वभाव पे क्या असर पड़ने वाला है, इस विज्ञान को जानता ही नहीं, वो मांस खाना शुरू कर देता है। और मांस उसके सामने पड़ा हो तो बच्चे को बताओ ये मांस पड़ा हुआ है, वो नफरत करेगा उससे, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, सोसाइटी बदलती है उसकी, उसको उसी को खाना शुरू कर देता है। साधारण सी बातें हैं, तो इसीलिए सतोगुणी जिसने बनना है, सतोगुण जिसने अपने मन के अंदर बढ़ाना है, वो खाने पे भी ध्यान देता है, मित्रता पर भी, संगत पर भी ध्यान देता है, पढ़ता क्या हूं उस पर भी ध्यान देता है, बात क्या करता हूं उस पर भी ध्यान देता है। तो उसके लिए जो मुख्य एक कर्म है जिसको सत्पुरुष कहते हैं, सेवा कर्म, अर्थात मेरे मन के अंदर जो स्वार्थ भावना रहती है, दूसरों के द्वारा सुख भोगने की भावना जो रहती है, ये मुझको स्वार्थ की ओर ले जाती है। तो इस भावना के विरुद्ध एक दूसरी भावना पैदा करना पड़ती है, मेरे द्वारा किसका कष्ट निवारण हो सकता है, मैं किसको सुख पहुंचा सकता हूं, मैं किसका दुख दूर कर सकता हूं, उसकी नजर से इस पर रहती है। और ये जो दूसरे को सुख पहुंचाने वाला कर्म है या दूसरे का दुख निवारण करने वाला कर्म है, इसके पीछे भी एक बात उसके ध्यान में जरूर बैठी रहती है। इसको सब कुछ कहते हैं प्रेमी सेवा तो कर लेकिन निष्काम सेवा। जिस सेवा के द्वारा तेरे मन की कोई कामना पूरी नहीं होनी चाहिए, तेरे मन की कोई भी कामना उस सेवा के द्वारा पूरी नहीं होनी चाहिए, निष्काम सेवा। और ये निष्काम सेवा कब होती है? जब तेरे अंदर ये सत्विचार बना रहता है, वाणी पढ़ के, शास पढ़ के या सत्संग श्रवण करके कि भाई करने वाला तो ईश्वर है, सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। सारे जगत का कर्ता तो ईश्वर, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाल। कारण कर्ता तो ईश्वर को जानता हूं, क्यों जानता हूं? यदि मेरे पास सतबुद्धि है तो मैं जानता हूं कारण कर्ता ईश्वर है। क्यों जानता हूं? क्योंकि ये मेरा जन्म जो है ये तो प्राण के अनुसार बीत रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। तो यदि आज मुझको मौका मिला है किसी सेवा करने का, चाहे उसका रोग निवारण कर रहा हूं, चाहे मैं उसको पैसे से उसकी सेवा कर रहा हूं, चाहे वस्त्र से उसकी सेवा कर रहा हूं, या वचन के द्वारा उसकी सेवा कर रहा हूं, कोई भी मेथड हो सकता है सेवा कर रहा हूं, तो मेरे अंदर यह होश बना रहता है कि मेरे सामने जो जीव है, मेरे सामने जो मनुष्य है, इसका प्रारब्ध इस समय मेरे पास लेकर आया है इसको, और मेरे द्वारा जो उसको सेवा प्राप्त हो रही है ये इसके भाग में है। तो ये जो कंडीशंस हैं आदान प्रदान की, ये प्रभु ने बनाई हैं। अब इसको ये मौका मिला है तो प्रार्थ के अनुसार तो मौका मिलेगा, सेवा करने का भी और सेवा लेने का भी मौका मिलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ये तेरे विवेक पर निर्भर करेगा। तेरे अंदर यदि विवेक बना हुआ है कि ये मौका ईश्वर ने क्रिएट किया है, मेरी क्रिएशन नहीं है ये, तो तू प्रभु का कार्य करेगा कि प्रभु ने कहा था किसी की सेवा करे निष्काम भाव से, तो निष्काम भाव से उसका सही मार्गदर्शन करता है। तो इसका प्रभाव तेरे मन पर क्या हुआ? तेरे मन पर प्रभाव हुआ, तेरे अंदर से जो कामना रूपी रोग है वो धीरे धीरे घटने लगता है, और जिसको जिसने सेवा ली है वो यदि बुद्धिमान है, उसके पास यदि सद्बुद्धि है, तो वो इसको ईश्वर का मार्गदर्शन समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा जीव तो सद्विचार ही देगा उसको, उसके कल्याण की ही तो बात करेगा, उसको धोखा थोड़ा देगा। तो वो व्यक्ति प्रभु की दात समझकर उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो सत्संगत होती है, जो सत के आधार पर चलती है, ईश्वर भक्ति के लिए जो संगत चलती है, आगे आगे बढ़ती है, तो इस तरह प्रकार का आदान प्रदान, इस प्रकार की सेवा वहां हुआ करती है। तो वहां सेवा करने वाले का भी कल्याण है और सेवा लेने वाले का भी कल्याण है, दोनों के दुर्गुणों का नाश हो रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मेरे अंदर सतोगुण बढ़ता रहता है, कामना घटती रहती है, ये पांच विकार जो हैं ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सतोगुणी जीव सिमरन तो करता ही करता है, बिना उसके सतोगुणी होगा कैसे वो? तो ये जो जीव है जो देह के बंधन में जी रहा था, ये धीरे धीरे देह के बंधन से मुक्त होने लगता है। किस रूप में? उसके अंदर ये अहंकार धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है, ये अज्ञानता उसके अंदर धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है कि मैं देह हूं। हर वक्त उसके अंदर एक चिंतन जलता है कि मैं जीव हूं, और प्रभु मेरे संग है, मेरी इस देह के अंदर ही मौजूद है, और मेरा जो बिगड़ा मन है वो भी इस देह के अंदर ही मौजूद है, तो मैं ईश्वर का संग कर कैसे सकता हूं? देह का संग तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन ईश्वर का संग सिमरन के द्वारा होता है। तो इसीलिए इस देह के अंदर वो जीव प्रभु का सिमरन करता है, प्रभु की याद करता है। तो बताइए, प्रभु सत रूप है, तो जो प्रभु की याद करेगा उसके अंदर सतोगुण कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए जिसके अंदर सतोगुण स्ट्रांग है वो मनुष्यों में देवता कहलाता है। देवता उसे कहते हैं जिस मनुष्य के द्वारा दूसरों का भला ही होता हो, जिस मनुष्य के पास बैठकर लोगों को ठंडक ही मिलती हो, उनकी मानसिक बेचैनी दूर होती हो, जिसके पास बैठकर उनके अंदर ईश्वर विश्वास बढ़ता हो, तो वो देवता नहीं तो क्या है? वो मनुष्यों को उनके कल्याण के लिए देही दे रहा है। तो मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ मनुष्य है उसी को देवता कहते हैं, और देवता क्या होता है? तो मैं एक राक्षस से देवता बन जाता हूं। शास्त्र के अनुसार चिंतन करता हुआ, उस चिंतन मनन के अनुसार कर्म करता हुआ, मैं ऐसा अपना आगे का प्रारब्ध तैयार कर लेता हूं कि इस देह की मृत्यु बीच में हो भी जाए, अगली देह जब मिलेगी तो यही सतोगुण प्रधान मन मुझको मिलेगा, और ये जो अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, इनका फल वहां सुख रूप में प्राप्त होगा और निष्कामता के रूप में प्राप्त होगा। वहां सुखों को भोगने की, सुख रूप जीवन तो होगा लेकिन सुखों को भोगने की कामना नहीं होगी, अंदर त्याग जीवन में होगा। वहां मेरा त्यागी जीवन, अगले जन्म में उसको त्यागी जीवन ही मिलेगा। इसलिए बचपन से ही मेरे अंदर ईश्वर भक्ति होगी, ईश्वर प्रेम होगा, मेरा ऐसा स्वभाव होगा कि लोगों को मेरे जीवन के द्वारा सुख पहुंचेगा, और मेरे चित्त में तो ठंडक रहेगी क्योंकि मुझको अपने देह का होश होगा, मन के बारे में होश होगा, मेरे रोम रोम में ईश्वर रमा हुआ है इसके बारे में होश होगा। जैसा कि महाराज जी के बचपन में था, उन्होंने खुद कहा था एक बार कि प्रेमी, जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है और संसार क्या है, और उनकी करनी क्या थी, 3 वर्ष की आयु में भी रात भर खाट पे ही बैठे बैठे प्रभु के ध्यान में लीन हो जाते थे। मां कहती थी कि मंगत क्या डर गया है, क्या कोई सपना देख लिया है, क्यों बैठा हुआ है? नहीं मां, सो जाता हूं, लेट जाता था। तो बचपन से ही वो स्वभाव लेके आया, नहीं आया, ये अपनी ही तो करनी थी, तो मैं वो करनी करूं और इतने होश में करनी करूं कि ये करने का फल मैंने संग लेकर जाना है, और ये देह केवल बदलनी है वस्त्र की तरह से, मैंने मरना नहीं है, मेरा जीवन निरंतर है, मृत्यु बीच में है ही नहीं। जो मैं अपने आप को अज्ञानता से देह समझ रहा हूं, देह बनकर जो जी रहा हूं मैं, ये मेरी अज्ञानता है। इसीलिए देह एक साधन है, ये एक इक्विपमेंट है, ये जो आपको ईश्वर भक्ति के लिए मिला है, इस अज्ञानता से मुक्त होने के लिए मिला है। इसका दुरुपयोग मैं संसार के भोग विलास बढ़ाने में ना करूं, इसलिए अपना भाग्य समझूं कि एक पूर्ण गुरु की तालीम मुझको मिली है, उनका ज्ञान मुझको मिला है, इसीलिए मैं वो कर्म करके जाऊं जिस कर्म का फल सतोगुण होता है। तो मैं सतोगुण की कमाई करूं, और सतोगुणी कमाई करके मैं इस संसार से विदा हूं, ताकि अगले जन्म में वो कमी पूरी हो जाए, मैं सतोगुण से निर्गुण हो सकूं, क्योंकि ईश्वर निर्गुण है, प्रकृति में 3 गुण है, तो मैं प्रकृति के बंधन से अर्थात देह के बंधन से मुक्त हो सकूं और निर्गुण बनकर उस आनंद रूप ईश्वर में लीन हो सकूं। ये मेरी गति है, इसको सदगति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, जिसके लिए मुझको मानव जन्म मिला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।